एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा, उल्फत की शम्मा तू है, मैं हूँ परवाना तेरा। शाने इलाही तेरी दुनिया में शाही तेरी, शाने इलाही तेरी दुनिया में शाही तेरी, दोजख का मालिक तू है, ताज शाहाना तेरा। भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। फूलों में नूर तेरा, हर जाहू जूर तेरा, फूलों में नूर तेरा, हर जाहू जूर तेरा, सर में सुरूर तेरा, मैं हूँ अफसाना तेरा। भूल न जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। आँखों में सूरत तेरी, मन में है मूरत तेरी। आँखों में सूरत तेरी, मन में है मूरत तेरी। दिल में है याद तेरी, लब पे तराना तेरा। भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा। प्रेम कहानी तेरी, शीरी जुबानी तेरी। प्रेम कहानी तेरी, शीरी जुबानी तेरी। सादा है जाम तेरा, आलम दीवाना तेरा। भूल ना जाना यीशु, मैं हूँ दीवाना तेरा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे जब आप उसके वचनों को ध्यान लगाकर सुनते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तू हमारे बीच आ, तेरा पवित्र आत्मा से हमें भर दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे श्रोताओं को विशेष आशीष दे पिता, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन से बहुतायत से उन्हें आशीष दे। और मेरे संगो पिता तेरा आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज हम लोग सीखेंगे शेष कलीसिया में भविष्यवाणी का वरदान। परमेश्वर अपने लोगों को भविष्यवाणी का वरदान दिया है। हम इसे बाइबल में पाते हैं, पुराना नियम में और नया नियम में भी परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने इच्छा को अपने लोगों तक पहुंचाया। और जब हम इस दुनिया के अंतिम समय में जी रहे हैं, परमेश्वर हमें अपना आत्मा बहुताय से देने के लिए प्रतिज्ञा करता है। शेष कलीसिया में परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान देने के विषय में बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाशित वाक्य 12 उत्पीड़न के दो प्रमुख समयों को प्रकट करता है। पहले के दौरान जो 538 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक चला, प्रकाशित वाक्य 12 का 6 और 14 में हम इसे पाते हैं। उसके अनुसार वफादार विश्वासियों को तीव्र उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। फिर से दूसरे आगमन से ठीक पहले शैतान उसकी शेष संतान पर हमला करेगा, जो कि शेष कलीसिया है, जो मसीह के प्रति निष्ठा को त्यागने से इनकार करती है। प्रकाशित वाक्य उन वफादार विश्वासियों की विशेषता बताता है जो शेष कलीसिया को बनाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। यह हम पढ़ते हैं और पाते हैं प्रकाशित वाक्य 12:17 में। यह वाक्यांश यीशु की गवाही भविष्यवाणी के प्रकटन की बात करता है, जो स्वर्गदूत और यहूना के बीच बाद की बातचीत से स्पष्ट है। पुस्तक के अंत के निकट स्वर्गदूत स्वयं की पहचान करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंत के तरफ, तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। प्रकाशित वाक्य 19:10 और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं का संगी दास हूं। प्रकाशित वाक्य 22:9। ये समांतर अभिव्यक्तियां यह स्पष्ट करती हैं कि ये भविष्यवक्ता हैं जिनके पास यीशु की गवाही है। यह स्वर्गदूत के कथन की व्याख्या करता है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 19:10। इस पद पर टिप्पणी करते हुए जेम्स मोफात ने लिखा, क्योंकि यीशु की के बारे में गवाही या साक्षी जिसके द्वारा दी गई भविष्यवाणी की आत्मा है, यह विशेष रूप से उन भाइयों को परिभाषित करता है जो भविष्यवाणी की प्रेरणा के धारक के रूप में यीशु की गवाही देते हैं। यीशु की गवाही व्यवहारिक रूप से यीशु द्वारा गवाही देने के बराबर है। यह यीशु का आत्म प्रकटन है, प्रकाशित वाक्य 1:1 के अनुसार, जो अंतत परमेश्वर को दी जाती है, जो मसीह भविष्यवक्ताओं को प्रेरित करता है। तो अभिव्यक्ति भविष्यवाणी की आत्मा का मतलब हो सकता है, पहला, पवित्र आत्मा परमेश्वर के एक प्रकटन से भविष्यवक्ता को प्रेरित कर रहा है, दूसरा, भविष्यवाणी के वरदान का सक्रिय होना, और तीसरा, खुद भविष्यवाणी का माध्यम। भविष्यवाणी का वरदान यीशु की गवाही भविष्यवाणी के माध्यम से कलीसिया के लिए शेष कलीसिया की एक विशिष्ट विशेषता है। यिर्मयाह ने इस वरदान के खत्म हो जाने को अधम से जोड़ा, व्यवस्था नहीं रही और उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। उन्होंने लिखा विलाप गीत 2:9 में। प्रकाशित वाक्य इन दोनों का होना अंत समय की कलीसिया की विशिष्ट विशेषताओं के रूप में पहचानता है। इसके सदस्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। भविष्यवाणी का वरदान, प्रकाशित वाक्य 12:17। परमेश्वर ने अपने लोगों को संगठित करने, निर्देश देने और मार्गदर्शन करने के लिए निर्गमन की कलीसिया को भविष्यवाणी का वरदान दिया। प्रेरितों के काम 7:38 में हम पढ़ते हैं, एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इज़राइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई, होशे 12:13। तो इस वरदान का उन लोगों के बीच पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो अंतिम पलायन में शामिल हैं। पाप प्रदूषित ग्रह पृथ्वी से स्वर्गीय कनान को पलायन, यह पलायन जो दूसरे आगमन के बाद होगा, यशाया 11:11 की अंतिम और पूर्ण पूर्ति है। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं छुड़ाएगा। अंतिम संकट में परमेश्वर का हमें मदद मिलेगा। पवित्र शास्त्र प्रकट करता है कि पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग शैतानी अजगर शक्ति के पूर्ण क्रोध का अनुभव करेंगे, जब वह उन्हें नष्ट करने का अंतिम प्रयास करेगा, जिसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:17 में। यह ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ हो। दानियल 12:1 कहता है, युगों के इस सबसे तीव्र संघर्ष से बचने में उनकी मदद करने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्रेम कृपा में अपने लोगों को यह आश्वासन दिया कि वे अकेले नहीं होंगे। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा उन्हें उनके अंतिम उद्देश्य के लिए सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करेगी, दूसरे आगमन पर उनके उद्धारकर्ता के साथ एकीकरण। निम्नलिखित दृष्टांत भविष्यवाणी वरदान के बाइबल और बाइबल के बाद की घटनाओं के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। मान लीजिए कि हम एक समुद्र यात्रा शुरू करने वाले हैं, जहाज का मालिक हमें निर्देशों की एक पुस्तक देता है, हमें बताता है कि इसमें हमारी पूरी यात्रा के लिए पर्याप्त निर्देश हैं, और यदि हम उन पर ध्यान दें तो हम सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के बंदरगाह तक पहुंच जाएंगे। पाल चढ़ाते हुए हम इसका विषय जानने के लिए अपनी पुस्तक खोलते हैं, हम पाते हैं कि इसका लेखक हमारी यात्रा में हमें नियंत्रित करने के लिए सामान्य सिद्धांत देता है और अंत तक उत्पन्न होने वाली विभिन्न आकस्मिकताओं को देखते हुए जहां तक संभव हो हमें निर्देश देता है। लेकिन वह हमें यह भी बताता है कि यात्रा का अंत का हिस्सा विशेष रूप से खतरनाक होगा, कि तेज रेत और तूफान के कारण तट की विशेषताएं हमेशा बदल रही हैं। लेकिन यात्रा के इस हिस्से के लिए वह कहता है, मैंने तुम्हें एक कप्तान दिया है जो तुमसे मिलेगा और तुम्हें ऐसे निर्देश देगा जिनकी आसपास की परिस्थितियों और खतरों में आवश्यकता हो सकती है, और तुम उसकी ओर ध्यान देना। इन निर्देशों के साथ हम निर्दिष्ट खतरनाक समय तक पहुंचते हैं और कप्तान वादे के अनुसार प्रकट होता है। लेकिन दल के कुछ सदस्य जब वो अपनी सेवाएं प्रदान करता है उसके खिलाफ उठ खड़े हो जाते हैं। हमारे पास दिशाओं की मूल पुस्तक है, वे कहते हैं, और यह हमारे लिए पर्याप्त है। हम बस अकेले उसी को मानते हैं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। दिशाओं की वह मूल पुस्तक की अब कौन सुनता है? वे जो कप्तान को अस्वीकार करते हैं या जो उसे प्राप्त करते हैं जैसा कि वह पुस्तक उन्हें निर्देश देती है। खुद न्याय आप करें। बाइबल के बाद के भविष्यवक्ता और बाइबल के विषय में आई हम चर्चा करें। भविष्यवाणी के वरदान ने स्वयं बाइबल को तैयार किया। बाइबल के बाद के समय में इसे पवित्र शास्त्र की जगह लेना या उसमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का सूचीबद्ध होना अब बंद हो गया है। भविष्यवाणी का वरदान अंत समय में वैसा ही कार्य करता है जैसा कि प्रेरितों के समय में। इसका जोर विश्वास और अभ्यास के आधार के रूप में बाइबल को बनाए रखने और इसकी शिक्षाओं को समझाने और इसके सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करने पर है। यह कलीसिया को स्थापित करने और उन्नत करने में शामिल है, जिससे वह अपने दिव्य रूप से नियुक्त विशेष कार्य को पूरा कर सके। भविष्यवाणी का वरदान दोनों व्यक्तियों और कलीसिया को ताड़ना देता है, चेतावनी देता है, मार्गदर्शन करता है और प्रोत्साहित करता है, उन्हें विधर्म से बचाता है और उन्हें बाइबल की सच्चाइयों पर एकजुट करता है। बाइबल के बाद के भविष्यवक्ता नाथान, गाद, असाप, समाया, अजरिया, एलियाजर, अहिया और ओबेद, मरियम, दबोरा, हुल्दा, सिमोन, यहुना, बपतिस्मा देने वाला, अकबुस, सिलास, अन्ना और फिलिपुस की चार बेटियों जैसे भविष्यवक्ताओं की तरह कार्य करते हैं, जो बाइबल के समय में रहते थे लेकिन जिनकी गवाही कभी बाइबल का हिस्सा नहीं बनी। उसी परमेश्वर ने जिसने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात की, जिनके लेख बाइबल में हैं, इन भविष्यवक्ताओं को भी प्रेरित किया। उनके संदेश पहले दर्ज किए गए दिव्य प्रकटन का खंडन नहीं करते थे। भविष्यवाणी वरदान का परीक्षण हमें करना चाहिए, क्योंकि बाइबल चेतावनी देती है कि परमेश्वर मसीह की वापसी से पहले झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हमें भविष्यवाणी वरदान के सभी दावों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5:20-22, और इसे हम पहला यूहन्ना 4:1 से भी तुलना करें। बाइबल कई दिशा निर्देशों को निर्दिष्ट करती है जिसके द्वारा हम वास्तविक भविष्यवाणी वरदान को नकली से अलग कर सकते हैं। पहला, क्या संदेश बाइबल से सहमत है व्यवस्था और गवाही से? यदि वे इस वचन के अनुसार नहीं बोलते हैं तो इसका कारण यह है कि उनमें ज्योति नहीं, कहता है यशायाह 8:20। इस पद का तात्पर्य है कि किसी भी भविष्यवक्ता के संदेश पूरी बाइबल में परमेश्वर की व्यवस्था और गवाही के अनुरूप होने चाहिए। बाद के भविष्यवक्ता को पहले के भविष्यवक्ताओं का खंडन नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा कभी भी उसकी पहले दी गई गवाही का खंडन नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर बदलती छाया की तरह नहीं बदलता है। दूसरा है, क्या भविष्यवाणियां सच होती हैं? यदि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने? जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना, कहता है व्यवस्था विवरण 18:21-22। तुलना करे इर्मिया 28:9 से। हालांकि भविष्यवाणियां भविष्यवाणी संदेश का एक अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा हो सकता है, उनकी सटीकता साबित की जानी चाहिए। तीसरा, क्या मसीह के अवतरण को मान्यता दी गई है? परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, कहता है 1 यूहन्ना 4:2-3। यह परीक्षण एक साधारण स्वीकृति कि यीशु मसीह पृथ्वी पर रहता था से अधिक की मांग करता है। सच्चे भविष्यवक्ता को मसीह के अवतरण पर बाइबल की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। उसके परमेश्वर होने और पूर्व अस्तित्व में उसका कुंवारी से जन्म, सच्ची मानवता, पाप रहित जीवन, प्रायश्चित बलिदान, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, मध्यस्थता सेवकाई और दूसरे आगमन में विश्वास करना चाहिए। और चौथा है, क्या भविष्यवक्ता अच्छे या बुरे फल लाता है? भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के प्रेरक परमेश्वर के पवित्र लोगों 2 पत्रस 1:21 के माध्यम से आती है। हम झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके फलों से पहचान सकते हैं। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, यीशु ने कहा, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, मत्ती 7:16-18-20 में हम पाते हैं। भविष्यवक्ता के दावे का मूल्यांकन करने में यह सलाह महत्वपूर्ण है। यह सबसे पहले भविष्यवक्ता के जीवन के बारे में बोलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भविष्यवक्ता को पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। पवित्र शास्त्र कहता है कि एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, याकूब 5:17। परंतु भविष्यवक्ता के जीवन को आत्मा के फल के द्वारा चित्रित किया जाना चाहिए, ना कि शरीर के कार्यों द्वारा। देखिए गलातियों 5:19-23। दूसरा, यह सिद्धांत दूसरों पर भविष्यवक्ता के प्रभाव से संबंधित है। संदेशों को स्वीकार करने वालों के जीवन में क्या परिणाम होते हैं? क्या उनके संदेश परमेश्वर के लोगों को विशेष कार्य के लिए तैयार करते हैं और उन्हें उनके विश्वास में एकजुट करते हैं? पढ़िए इफिसियों 4:12-16 में। भविष्यवाणी वरदान होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को इन बाइबल परीक्षणों के अधीन किया जाना चाहिए। यदि वह इन मानदंडों को पूरा करता है तो हमें विश्वास हो सकता है कि वास्तव में पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति को भविष्यवाणी का वरदान दिया है। तो भाइयों, हम इसमें पाते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो भविष्यवक्ता को बुलाया गया है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। बाइबल में यह दिया है चिन्ह जिसे हम उसे परख सकते हैं और पहचान सकते हैं। चलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें मदद और अगुवाई करे कि हम उसके भविष्यवाणी के आत्मा को पहचान सके, उसे अपनाए और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए इस्तेमाल करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमें तू तेरे राज के लिए तैयार कर, हमें तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सब आशीषों के लिए, तेरे प्रतिज्ञा के लिए। इसमें हम अपने मनों को, दिलों को खोल देते हैं पिता, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा के वरदान को अपनाएं और तेरे सच्चाई का मार्ग में चल सके। शक्ति दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।